मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे जो क्वाड समूह है उनके नेताओं की जो अभी अमेरिका में बातचीत हुई है उसके बारे में कुछ तथ्य रखना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले कुछ दूसरे समाचार भी देख लेते हैं और एक दो सूचनाएं भी मैं आपको देना चाहूँगा। पहली सूचना यह है कि सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और हर साल की तरह कोई नई बात नहीं है। इस बार भी आपको यही पढ़ने को मिल रहा होगा, YouTube पर बहुत से ऐसी बातें सुनने और देखने को मिल रही होंगी कि जो हिंदी वालों का रिजल्ट है इस बार भी बहुत खराब रहा है। हर साल लगभग यही स्थिति रहती है और जब ऐसी बातें सुनते हैं तो हिंदी वाले जो युवा हैं और यहाँ तक कि जो हमारे जो दूसरी लैंग्वेज वाले युवा हैं जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सपना पाले हुए हैं उनका निरुत्साह होना स्वाभाविक है, है ना। वो अपने को डिमोरलाइज फील कर रहे हैं। कल मेरे पास इससे संबंधित बहुत से मेल आए तो मुझे लगा कि आज इसी विषय को मैं क्यों न ले लूं। फिर मैंने फैसला किया कि नहीं, आज मुझे क्वाड पर बात करनी चाहिए, लेकिन इस विषय पर मैं बात करूंगा, बहुत तार्किक रूप से बात करूंगा और मैं कल इसी विषय पर आप सबसे मुख्य विषय के अंतर्गत बात करूंगा। हिंदी का रिजल्ट क्यों इतना पुअर है इसे हम देखने जानने और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो दूसरी खबर है वो ये कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो हमारा नेशनल सैंपल सर्वे है उसकी अभी एक रिपोर्ट आई है जो हमारे कृषि व्यवस्था से संबंधित है। पिछले कुछ दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसके बारे में आप सबको बता सकूं, लेकिन दूसरी घटनाएं इतनी प्रोमिनेंट हो जा रही हैं कि मैं उस पर बात नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन चलिए, यह एक ऐसी घटना है जो कभी पुरानी नहीं होती है, मैं इस पर इत्मीनान से आप लोगों से बात करूंगा। लेकिन यदि आप अपने लेवल पर भी इस पर कुछ सामग्री प्राप्त कर सकते हैं तो अपने पास रखें और इसके जो इंपॉर्टेंट डेटा हैं वो बल्कि आपको नोट भी कर लेने चाहिए। डेफिनेटली मैं इस पर आगे चलकर बात करूंगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कहीं आपको ये न लगे कि सर ने इसे इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट एट ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए जो दो तीन जो छोटे छोटे समाचार हैं उन्हें देख लेते हैं, इसके बाद मुख्य विषय पर आएंगे। एक समाचार जो अब आप लोगों के लिए नया नहीं रह गया है और आप खुद भी जानते हैं वो ये है कि बकायदे जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसके हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल शुभारंभ कर दिया है। डिजिटल मिशन, भारत डिजिटल मिशन जो हेल्थ से संबंधित है और इसके तहत जो हमारे नागरिक हैं उन सबको एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। डिजिटल हेल्थ आईडी देखिए बहुत सिंपल सा है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है। उसमें होगा ये कि जैसे आपकी जो आईडी है जब आप उस पर जाएंगे तो आपके हेल्थ की पूरी रिपोर्ट वहां दर्ज होगी, आपको किस किस तरह की बीमारियां इससे पहले रही हैं, कौन कौन से दवाइयां ली गई हैं, उसके क्या प्रभाव रहे हैं, मतलब आप यूं कह लीजिए कि हेल्थ हिस्ट्री। अब ये आपके बकायदे आप यूं कह लीजिए कि कंप्यूटर पर अवेलेबल है, मोबाइल पर अवेलेबल है। अब आप देश में कहीं भी जा रहे हैं तो आपको अपनी फाइल लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप अपना आईडी बताएंगे वैसे ही स्क्रीन पर आपके बारे में सारी जानकारी आ जाएगी, जैसे आधार कार्ड का नंबर बताते ही आपका सब कुछ आ जाता है ना, आपका क्या एड्रेस है, क्या एज है, सब पता लग जाती है। तो इसी तरह से इसकी जानकारी आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीमारी का रिकॉर्ड रखने की एक परंपरा की शुरुआत होगी, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग भी जो होते हैं वो अपनी बीमारी का रिकॉर्ड नहीं रखते। ठीक है, कुछ बीमारी हुई, उसका इलाज हुआ, बात खत्म हो गई, नई बीमारी हुई, फिर उसका इलाज हुआ, फिर बात खत्म हो गई, जबकि मेडिकल साइंस ये कहता है कि इसकी हिस्ट्री होनी चाहिए, उससे डॉक्टर को सही इलाज करने में बहुत मदद मिलती है। तो इसलिए यह एक क्रांतिकारी जैसा कदम है। आप देश में कहीं चले जाइए, विदेश में कहीं चले जाइए, बकायदे आपके मोबाइल पर आपकी हिस्ट्री अवेलेबल है, आप वो हिस्ट्री किसी भी डॉक्टर को भेज करके जो स्पेशलिस्ट हैं अपने उनसे राय ले सकते हैं। तो इससे एक तरह से जो टेली मेडिसिन है उसका भी क्षेत्र बहुत व्यापक होगा और हेल्थ सेक्टर में मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कार्य हुआ है। और देखिए कि कैसे डिजिटल का एक बहुत ही बेहतर तरीके से सोशल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस पर आपकी थोड़ी सी ठीक ठाक तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ के सेक्टर में उठाया गया यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। दूसरी बात दोस्तों की जो स्वच्छता का जो सर्वेक्षण है वो शुरू हो गया है, इसमें मैं आपको एक एडिशन देना चाहूंगा, वो ये कि इस बार जो स्वच्छता का सर्वेक्षण हो रहा है उसमें जिलों को भी शामिल किया गया है, यानी कि कौन सा जिला सबसे स्वच्छ है उनकी भी रैंकिंग होगी। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये किया जा रहा है, बस एक छोटा सा ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन का पीस है। फ्रेंड्स, एक मुझे पढ़ने को मिला जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने आपसे पहले बात की थी कि भारत में अब सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। जैसे इलेक्ट्रिक जो वाहन बनते हैं या जो मोबाइल ही होते हैं उनमें चिप्स लगती है, तो सेमीकंडक्टर उसका एक कह लीजिए कि तत्व है। और भारत अभी लगभग हर साल पौने दो लाख करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करता है। हम सेमीकंडक्टर नहीं बनाते हैं। और ये सोचा जा रहा है कि सन 2025 तक जो हमें जरूरत होगी सेमीकंडक्टर की, वो लगभग 7.4 लाख करोड़ रुपए की, 7.5 लाख करोड़ मोटे तौर पर आप कह सकते हैं, अगर हम इंपोर्ट करते रहे तो इतनी विदेशी मुद्रा हमें सेमीकंडक्टर के लिए देनी पड़ेगी। तो भारत इस कोशिश में है कि क्यों नहीं हम अपने ही देश में सेमीकंडक्टर बनाएं। कुछ दिनों पहले रिलायंस ने इस तरह की घोषणा की थी कि वह इस क्षेत्र में आना चाहता है, लेकिन इसके बाद कुछ खास सुनने पढ़ने को नहीं मिला है। लेकिन एक अखबार ने लिखा है कि जो ताइवान है, ताइवान से भारत की बातचीत चल रही है, ताइवान सेमीकंडक्टर बनाता है और इसमें उसे बहुत ही सिद्धस्थता हासिल है, तो उससे बातचीत चल रही है और संभव है कि ताइवान भारत में ही आकर के सेमीकंडक्टर बनाने लगे। और अगर ऐसा होता है तो ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि आप सोच करके देखिए कि हमारी कितनी आवश्यकता है और इससे हम कितनी विदेशी मुद्रा बचा सकेंगे। आपको ध्यान होगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे और 5 कंपनियों के सीईओ से मिले थे, तो उसमें एक कंपनी थी क्वालकॉम। मैंने 5 कंपनियों के बारे में आपको बताया था, क्वालकॉम वो बेसिकली अमेरिका की कंपनी है और चिप बनाने के मामले में मतलब आप कह लीजिए कि महारत हासिल है। उससे भी बातचीत हुई है, तो हो सकता है कि भारत में वो भी चिप बनाने के लिए आना चाहें, लेकिन देखते हैं। फिर भी यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके ध्यान में रहना चाहिए। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में देखिए, क्वाड के संबंध में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये 4 देशों का संगठन है जिसमें भारत है, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। कुछ तथ्य आपको बहुत स्पष्ट होने चाहिए, मैं लेटेस्ट सिचुएशन में आपको बता रहा हूं। पहला तो यह है कि ये कोई सैन्य संगठन नहीं है, यानी मिलिट्री गठबंधन नहीं है, जबकि अभी ही एक और गठबंधन तैयार हुआ है, ऑकस। इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की है, ऑकस जो 3 देशों का गठबंधन है, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। ये बेसिकली सैन्य संगठन है, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। देखिए, सैन्य संगठन का मतलब है कि केवल सैन्य मामलों में साझेदारी होगी, और अगर सैन्य संगठन नहीं है तो मतलब दूसरे क्षेत्रों में भी हम एक दूसरे की भागीदारी करेंगे। ये जो क्वाड बना है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि चीन जो धीरे धीरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में लगातार अपना प्रभुत्व बढ़ाता चला जा रहा है, यहाँ के जो आइलैंड हैं उन पर दबदबा करते चला जा रहा है, उनको बकायदे ऋण देता है, ऋण के माध्यम से उन पर अधिकार कर लेता है, टेक्नोलॉजी उन्हें प्रोवाइड करता है, इसके बाद उनके जो संवेदनशील सारी चीज़ें होती हैं उनकी पर उसकी पकड़ हो जाती है, जो रोड वगैरह बनाने का मामला है सब आप बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं, वहां निवेश करता है और इसके बाद उन देशों पर अपना दबदबा कायम कर लेता है। ये चीन की नीति है और पूरी दुनिया इससे परिचित हो गई है। तो डेफिनेटली अमेरिका, आप जानते हैं कि ट्रंप के समय से ही चीन के इस विस्तार को लेकर के चिंतित है, और जब बाइडेन साहब आए हैं तो वो भी बहुत इस मामले को लेकर के सतर्क हैं कि चीन को किसी भी तरीके से रोका जाना चाहिए। तो ये जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है जिसमें भारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, हिस्सा मतलब इस रूप में कि हम तो उस क्षेत्र से ही व्यापार करते हैं जो समुद्री व्यापार हमारा होता है, तो डेफिनेटली भारत आप यूं कह लीजिए कि इस क्वाड का हार्ट है, केंद्र में है भारत। देखिए, अब जापान भी एशिया में ही है, लेकिन भारत सबसे इम्पॉर्टेंट नेशन है इसके मामले में। तो ये पहली बार हुआ है, सोचिए कि इतने सालों के बाद पहली बार हुआ है कि क्वाड देश के जो चारों लीडर हैं, हेड हैं, वो आपस में मिले हैं, ये पहली बार हुआ है। तो इससे पता लगता है कि क्वाड धीरे धीरे कैसे महत्वपूर्ण होता जा रहा है। देखिए, इन्होंने अभी जो बातचीत की है वो नो डाउट कि चीन के प्रति, तो सीधे सीधे नाम न लेकर के, यह कि जो हमारा हिंद प्रशांत क्षेत्र है ये मुक्त और स्वतंत्र हो, समावेशी और लचीला हो, और इसको बकायदे सभी के लिए खुले बनाने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। और ये भी कहा गया है कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र में नियम सम्मत कानून बने, बिल्कुल अबाध तरीके से आवाजाही हो, और क्षेत्रीय अखंडता इस देश, इस क्षेत्र के जितने भी राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों की बनी रहे। सीधी सी बात है कि वो चीन को संदेश दे रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, अब इनका कार्य क्षेत्र जो है, आप यूं कह लीजिए कि समझौते के जो क्षेत्र हैं, और बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी क्या क्या बात हुई, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा, अभी मैंने सेमीकंडक्टर के बारे में आपसे बात की है ना, क्योंकि चीन बहुत बड़ा इसका आपूर्ति करता है, तो इसके बारे में भी देश आपस में सहयोग करेंगे। साथ ही जो अवैध फिशिंग होती है, उस अवैध फिशिंग को रोकने की कोशिश की जाएगी। जलवायु संबंधित जो पूरे की पूरी दुनिया के सामने संकट पैदा हो रहा है, उसकी भी कोशिश होगी। और साथ ही साथ 5G का जो विकास हो रहा है, उसमें भी ये देश आपस में भागीदारी निभाएंगे। आपको ध्यान होगा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि जो चीन है, ये जो आसपास के जो दूसरे देश हैं, वहाँ 5G और इस तरह से टेक्नोलॉजी दे करके उन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता जा रहा है। तो उसके जवाब के रूप में क्वाड के देशों ने यह फैसला किया है कि वो 5G के विकास में भी आपस में समझौता करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों कुछ और भी हुई, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष में सहयोग संबंधी बातचीत भी की गई है और इसके बारे में सहमतियाँ भी बनी हैं। बहुत संक्षिप्त में मैंने आपके सामने बातें रखी हैं, इस पर आपको आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। एक आर्टिकल मैं आज आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं, इंग्लिश में भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, एडिटोरियल कमेंट्स भी आपको दिए जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस पर एक छोटा सा नोट्स कि भारत का इस पर क्यों जोर है, भारत को इससे क्या लाभ हो सकते हैं, भारत अपनी रणनीति में क्यों क्वाड को इतना महत्व दे रहा है, इस एंगल से बेहतर होगा कि आप कुछ पॉइंट्स नोट कर लें। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, कृति शर्मा वाराणसी से, साई बिरारे, नीलेश चौधरी, विवेक ठाकुर, रवि नारायण खापुरा बिहार से और रमेश जमी, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।